समय पर्चा नंबर 6।
IGCSE Practice Examination in Urdu as a Second Language Paper 2 Listening Turnover now
Mashq number 1 Sawal number 1 ta 8 Sawal number 1 ta 8 ke liye aap 8 mukhtalif hisse sunenge har sawal ka jawab di gayi line par tehreer karein aapka jawab mukhtasar hona chahiye aap har hisse ko do baar sunenge सवाल नंबर 1
दादा अब्बू आपने वादा किया था ना कि आज मुझे पार्क लेकर जाएंगे
हाँ बेटा जरूर शाम होते ही जब धूप की तमाजत कुछ कम हो जाएगी हम पार्क की तरफ रवाना होंगे
वाह क्या मैं वहाँ झूलों पर खूब ऊंचा झूल सकूंगी
बिल्कुल तुम दिल खोल कर झूलो और आखिर में ठंडी ठंडी आइसक्रीम से भी लुत्फ उठाएंगे
दादा अब्बू आपकी मेहरबानी से हर लम्हा खास बन जाता है
सवाल नंबर 1
दादा अब्बू आपने वादा किया था ना कि आज मुझे पार्क लेकर जाएंगे
हाँ बेटा जरूर शाम होते ही जब धूप की तमाजत कुछ कम हो जाएगी हम पार्क की तरफ रवाना होंगे
वाह क्या मैं वहाँ झूलों पर खूब ऊंचा झूल सकूंगी
बिल्कुल तुम दिल खोल कर झूलो और आखिर में ठंडी ठंडी आइसक्रीम से भी लुत्फ उठाएंगे
दादा अब्बू आपकी मेहरबानी से हर लम्हा खास बन जाता है
सवाल नंबर 2
तवज्जो फरमाएं गुलरेज बुकशॉप अपने नन्हे कारीन के लिए एक शानदार पेशकश का ऐलान करती है सिर्फ आज के दिन बच्चों की तमाम अकसाम की किताबों पर 25% खुसूसी रायत दी जा रही है इसमें कहानियों की किताबें तालीमी मवाद और दिलचस्प मालूमाती किताबें शामिल हैं ये महदूद मुद्दत की पेशकश शाम 6 बजे तक जारी रहेगी इसलिए वालदैन और तलबा से गुजारिश है कि इस बेहतरीन मौका से फ़ायदा उठाएं और अपनी पसंदीदा किताबें हासिल करें
सवाल नंबर 2
तवज्जो फरमाएं गुलरेज बुकशॉप अपने नन्हे कारीन के लिए एक शानदार पेशकश का ऐलान करती है सिर्फ आज के दिन बच्चों की तमाम अकसाम की किताबों पर 25% खुसूसी रायत दी जा रही है इसमें कहानियों की किताबें तालीमी मवाद और दिलचस्प मालूमाती किताबें शामिल हैं ये महदूद मुद्दत की पेशकश शाम 6 बजे तक जारी रहेगी इसलिए वालदैन और तलबा से गुजारिश है कि इस बेहतरीन मौका से फ़ायदा उठाएं और अपनी पसंदीदा किताबें हासिल करें
सवाल नंबर 3
तुमने वो नया ड्रामा देखा जो कल टीवी पर आया था
नहीं कल तो हमारी बिगड़ी चली गई थी
अरे जबरदस्त हो गया फिर तो तुमने कुछ नहीं खोया क्योंकि ड्रामा बहुत बेजार कुन था।
अच्छा हुआ मैंने अपना वक्त बचा लिया।
सवाल नंबर तीन,
तुमने वो नया ड्रामा देखा जो कल टीवी पर आया था?
नहीं, कल तो हमारी बिगड़ी चली गई थी।
अरे जबरदस्त हो गया, फिर तो तुमने कुछ नहीं खोया, क्योंकि ड्रामा बहुत बेजार कुन था।
अच्छा हुआ मैंने अपना वक्त बचा लिया।
सवाल नंबर चार,
भाई ये छतरी कितने की है?
750 रुपए की है, लेकिन अगर दो लें तो एक पर 100 रुपए कम कर दूंगा।
एक ही चाहिए, लेकिन रंग दूसरा दिखा सकते हैं?
जी बिल्कुल, ये लीजिए नीला रंग।
सवाल नंबर चार,
भाई ये छतरी कितने की है?
750 रुपए की है, लेकिन अगर दो लें तो एक पर 100 रुपए कम कर दूंगा।
एक ही चाहिए, लेकिन रंग दूसरा दिखा सकते हैं?
जी बिल्कुल, ये लीजिए नीला रंग।
सवाल नंबर पांच,
नजमा अस्सलाम वालेकुम, मैं अभी अस्पताल जा रहा हूँ, अम्मा को चक्कर आ गए और इन्हें फौरन देखने की जरूरत है। घर का दरवाजा बंद है, अगर तुम आ रही हो तो मुझे कॉल कर देना, मैं रास्ते में ही हूँ, जल्दी पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ।
सवाल नंबर पांच,
नजमा अस्सलाम वालेकुम, मैं अभी अस्पताल जा रहा हूँ, अम्मा को चक्कर आ गए और इन्हें फौरन देखने की जरूरत है। घर का दरवाजा बंद है, अगर तुम आ रही हो तो मुझे कॉल कर देना, मैं रास्ते में ही हूँ, जल्दी पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ।
सवाल नंबर छः,
अली तुम स्कूल के ट्रिप के लिए फॉर्म जमा करा चुके हो?
नहीं, कल आखिरी तारीख है, कल जमा करा दूंगा।
देख लो, सर फैसल कह रहे थे देर करने वालों का नाम फहरिस्त से निकाल देंगे।
नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं होगा।
सवाल नंबर छः,
अली तुम स्कूल के ट्रिप के लिए फॉर्म जमा करा चुके हो?
नहीं, कल आखिरी तारीख है, कल जमा करा दूंगा।
देख लो, सर फैसल कह रहे थे देर करने वालों का नाम फहरिस्त से निकाल देंगे।
नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं होगा।
सवाल नंबर सात,
आपको होटल में खुश आमदेद कहते हैं, फरमाइए हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं?
मुझे 3 दिन के लिए एक दो बिस्तर वाला कमरा चाहिए।
क्या आप नाश्ता शामिल करना चाहेंगी?
जी नहीं, सिर्फ कमरा मुख्तस कीजिए।
सवाल नंबर सात,
आपको होटल में खुश आमदेद कहते हैं, फरमाइए हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं?
मुझे 3 दिन के लिए एक दो बिस्तर वाला कमरा चाहिए।
क्या आप नाश्ता शामिल करना चाहेंगी?
जी नहीं, सिर्फ कमरा मुख्तस कीजिए।
सवाल नंबर 8।
रेडियो पाकिस्तान के आज शब के प्रोग्रामों की तरतीब कुछ यूं होगी। सबसे पहले सुनेंगे एक खुसूसी इंटरव्यू मशहूर मुसन्निफा निदा जावेद के साथ, जहां वो अपने ख्यालात और तख्लीकी सफर के दिलचस्प पहलुओं से आगाह करेंगी। इसके बाद रात 10 बजे पेश किया जाएगा सियासी तबादला ख्याल, जहां आम कौमी और बैनुल अक्वामी मौजूआत पर मुफस्सिल गुफ्तगु होगी और प्रोग्राम का शानदार इख्तिताम रात 11 बजे नशर होने वाले मुशायरे के साथ होगा।
सवाल नंबर 8।
रेडियो पाकिस्तान के आज शब के प्रोग्रामों की तरतीब कुछ यूं होगी। सबसे पहले सुनेंगे एक खुसूसी इंटरव्यू मशहूर मुसन्निफा निदा जावेद के साथ, जहां वो अपने ख्यालात और तख्लीकी सफर के दिलचस्प पहलुओं से आगाह करेंगी। इसके बाद रात 10 बजे पेश किया जाएगा सियासी तबादला ख्याल, जहां आम कौमी और बैनुल अक्वामी मौजूआत पर मुफस्सिल गुफ्तगू होगी और प्रोग्राम का शानदार इख्तिताम रात 11 बजे नशर होने वाले मुशायरे के साथ होगा।
मश्क नंबर 1 खत्म हुई। अब आप थोड़ी देर में मश्क नंबर 2 सुनेंगे। पर्चे में दिए गए मश्क नंबर 2 के सवालात पढ़ें। मश्क नंबर 1 खत्म हुई। अब आप थोड़ी देर में मश्क नंबर 2 सुनेंगे। पर्चे में दिए गए मश्क नंबर 2 के सवालात पढ़ें। मश्क नंबर 2 सवाल नंबर 9। मोबाइल फोन की इजाद के बारे में आप एक तकरीर सुनें और नीचे दिए गए जुमले एक या दो लफ्ज लिखकर मुकम्मल करें। आप ये तकरीर 2 बार सुनेंगे।
मोबाइल फ़ोन आज के दौर में एक आम सी चीज़ बन चुकी है, लेकिन चंद दहाइयों पहले ये एक नायाब और महंगी सहूलत समझी जाती थी। दुनिया का पहला मोबाइल फ़ोन 1973 में बनाया गया, जिसका वज़न तकरीबन 1 किलोग्राम था और इसे सिर्फ कॉल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वक्त के साथ साथ ये आला छोटा, सस्ता और ज़्यादा कारआमद बनता चला गया। 1980 की दहाई में मोबाइल फ़ोन सिर्फ कारोबारी अफराद या आला हुकाम के पास हुआ करता था। उस वक्त के फ़ोन बड़े साइज़ के, भारी और महदूद खसूसियात के हामिल थे। इनमें सिर्फ कॉल करने और कॉल सुनने की सहूलत मौजूद थी, पैगामात भेजने, कैमरे इस्तेमाल करने या इंटरनेट तक रसाई का तसव्वुर भी नहीं था। 2000 की दहाई में मोबाइल फ़ोन में कैमरे, SMS और FM रेडियो और गेम्स शामिल की गईं, जिससे ये सिर्फ बातचीत का ज़रिया नहीं रहा बल्कि तफरीह और رابطے کا ایک مکمل آلہ بن گیا۔ اس کے بعد اسمارٹ فون کا دور شروع ہوا جن میں انٹرنیٹ، ای میل، ایپ اور سوشل میڈیا کی سہولت دستیاب ہو گئی۔ اب ایک عام موبائل فون کے ذریعے بینکنگ، خریداری، تعلیم اور صحت سے متعلق کئی کام بآسانی کیے جا سکتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق آج دنیا کی آدھی سے زیادہ آبادی موبائل فون استعمال کر رہی ہے۔ بچے، بزرگ، خواتین اور مرد سب کے پاس موبائل فون موجود ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ہر شخص دن میں کم از کم 3 سے 4 گھنٹے اپنے فون کے ساتھ گزارتا ہے۔ خاص طور پر وبا کے دنوں میں جب اسکول بند تھے، موبائل فون اور انٹرنیٹ نے تعلیم کا عمل جاری رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ موبائل فون نے زندگی کو آسان ضرور بنایا ہے، لیکن اگر اس کا استعمال احتیاط سے نہ کیا جائے تو یہ نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس سہولت سے فائدہ ضرور اٹھائیں مگر ذمہ داری کے ساتھ۔
اب آپ یہ تقریر دوبارہ سنیں۔
موبائل فون آج کے دور میں ایک عام سی چیز بن چکی ہے، لیکن چند دہائیوں پہلے یہ ایک نایاب اور مہنگی سہولت سمجھی جاتی تھی۔ دنیا کا پہلا موبائل فون 1973 میں بنایا گیا، جس کا وزن تقریباً 1 کلوگرام تھا اور اسے صرف کال کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ آلہ چھوٹا، سستا اور زیادہ کارآمد بنتا چلا گیا۔ 1980 کی دہائی میں موبائل فون صرف کاروباری افراد یا اعلیٰ حکام کے پاس ہوا کرتا تھا۔ اس وقت کے فون بڑے سائز کے بھاری اور محدود خصوصیات کے حامل تھے۔ ان میں صرف کال کرنے اور کال سننے کی سہولت موجود تھی، پیغامات بھیجنے، کیمرے استعمال کرنے یا انٹرنیٹ تک رسائی کا تصور بھی نہیں تھا۔ 2000 کی دہائی میں موبائل فون میں کیمرے، ایس ایم ایس اور ایف ایم ریڈیو اور گیمز شامل کی گئیں، جس سے یہ صرف بات چیت کا ذریعہ نہیں رہا بلکہ تفریح اور رابطے کا ایک مکمل آلہ بن گیا۔ اس کے بعد اسمارٹ فون کا دور شروع ہوا جن میں انٹرنیٹ، ای میل، ایپ اور سوشل میڈیا کی سہولت دستیاب ہو گئی۔ اب ایک عام موبائل فون کے ذریعے بینکنگ، خریداری، تعلیم اور صحت سے متعلق کئی کام بآسانی کیے جا سکتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق آج دنیا کی آدھی سے زیادہ آبادی موبائل فون استعمال کر رہی ہے۔ بچے، بزرگ، خواتین اور مرد سب کے پاس موبائل فون موجود ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ہر شخص دن میں کم از کم 3 سے 4 گھنٹے اپنے فون کے ساتھ گزارتا ہے۔ خاص طور پر وبا کے دنوں میں جب اسکول بند تھے، موبائل فون اور انٹرنیٹ نے تعلیم کا عمل جاری رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ موبائل فون نے زندگی کو آسان ضرور بنایا ہے، لیکن اگر اس کا استعمال احتیاط سے نہ کیا جائے تو یہ نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس سہولت سے فائدہ ضرور اٹھائیں مگر ذمہ داری کے ساتھ۔
مشق نمبر 2 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 3 سنیں گے۔ پرچے میں دیے گئے مشق نمبر 3 کے سوالات پڑھیں۔ مشق نمبر 3، سوال نمبر 10، آپ ناشتہ کرنے کی عادت کے متعلق 6 اشخاص کی گفتگو سن رہے ہیں. ہر ایک شخص کو اس کی دی گئی رائے اے تا جی سے ملائیں. ہر شخص کے لیے انگریزی حروف اے تا جی میں سے ایک حرف دیے گئے خانے میں لکھیں. ہر حرف کا استعمال صرف ایک بار کریں. ایک حرف اضافی ہے جسے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ہر حصے کو دو بار سنیں گے. پہلی رائے.
میرے نزدیک ناشتہ اس لیے سب سے اہم ہوتا ہے کیونکہ یہ پورے دن کی توانائی کا آغاز ہوتا ہے. جب میں ناشتہ کر کے اسکول جاتی ہوں تو کلاس میں دھیان زیادہ ہوتا ہے اور جسم بھی ہلکا پھلکا محسوس ہوتا ہے. ایک دو بار ایسے دن بھی گزرے جب ناشتہ کیے بغیر نکلنا پڑا تو سارا دن سر میں درد رہا اور دل بھی بے چین سا رہا. تب سے میں نے یہ اصول بنا لیا ہے کہ ناشتہ کیے بغیر دن شروع نہیں کروں گی.
دوسری رائے.
میرے خیال میں ناشتہ انسان کے جسم کے لیے وہی حیثیت رکھتا ہے جو گاڑی کے لیے ایندھن کی ہوتی ہے. ساری رات کے بعد جسم کو توانائی کی ضرورت ہوتی ہے اور اگر ہم ناشتہ چھوڑ دیں تو توانائی نہیں ملتی. میں جب جلدی اٹھ کر ناشتہ کرتا ہوں تو میرا دن زیادہ منظم اور بہتر گزرتا ہے. خاص طور پر دودھ، انڈا اور پھل اگر صبح کھا لیے جائیں تو دوپہر تک بھوک بھی نہیں لگتی اور دماغ بھی بہتر کام کرتا ہے.
تیسری رائے.
میں پہلے ناشتہ چھوڑنے کا عادی تھا لیکن پھر میری والدہ نے سختی سے کہا کہ بغیر ناشتہ کیے اسکول نہ جایا کرو. اس کے بعد جب میں نے باقاعدگی سے ناشتہ کرنا شروع کیا تو فرق خود محسوس کیا. نہ صرف میری تھکن کم ہوئی بلکہ پڑھائی میں دھیان بھی بہتر ہوا. اب میں ہر روز کچھ نہ کچھ ضرور کھاتا ہوں. میرے لیے ناشتہ ایک اچھی شروعات کی ضمانت ہے.
چوتھی رائے.
ناشتہ میرے لیے صرف کھانے کا وقت نہیں بلکہ خاندان کے ساتھ بیٹھنے کا ایک خوبصورت لمحہ بھی ہوتا ہے. جب سب لوگ ایک ساتھ میز پر ہوتے ہیں اور ہنسی مذاق کے ساتھ دن کا آغاز ہوتا ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ صحت مند ناشتہ کریں تو دن بھر چائے، بسکٹ یا فاسٹ فوڈ کی طلب بھی کم ہو جاتی ہے. میرے خیال میں ناشتہ صرف جسم نہیں بلکہ دل کے لیے بھی ضروری ہے.
پانچویں رائے.
جب میں بغیر ناشتے کے دفتر جاتا ہوں تو آدھے گھنٹے بعد ہی کمزوری اور چڑچڑا پن محسوس ہونے لگتا ہے. اس کے برعکس جب میں ناشتہ کر لیتا ہوں تو ذہن تر و تازہ اور جسم ہلکا لگتا ہے. میرے لیے دلیا، انڈا یا پھل ایک بہترین صبح کی شروعات ہیں. ناشتہ کرنے سے نہ صرف جسمانی طاقت ملتی ہے بلکہ مزاج بھی اچھا رہتا ہے جو کسی بھی دن کی کامیابی کے لیے ضروری ہوتا ہے.
چھٹی رائے. میرے نزدیک ناشتہ سب سے اہم ہے کیونکہ یہ جسم کو فعال کرتا ہے. جب ہم صبح کچھ کھاتے ہیں تو ہمارا جسم دن بھر بہتر انداز میں حرارت استعمال کرتا ہے. میں نے اپنی غذا میں تبدیلی ناشتہ سے ہی شروع کی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میری توانائی میں اضافہ ہوا اور غیر ضروری بھوک بھی کم ہو گئی. اب میں سمجھتا ہوں کہ ناشتہ چھوڑنا اپنی صحت کے ساتھ ناانصافی ہے۔ اب آپ یہ گفتگو دوبارہ سنیں۔ پہلی رائے،
میرے نزدیک ناشتہ اس لیے سب سے اہم ہوتا ہے کیونکہ یہ پورے دن کی توانائی کا آغاز ہوتا ہے۔ جب میں ناشتہ کر کے اسکول جاتی ہوں تو کلاس میں دھیان زیادہ ہوتا ہے اور جسم بھی ہلکا پھلکا محسوس ہوتا ہے۔ ایک دو بار ایسے دن بھی گزرے جب ناشتہ کیے بغیر نکلنا پڑا تو سارا دن سر میں درد رہا اور دل بھی بے چین سا رہا۔ تب سے میں نے یہ اصول بنا لیا ہے کہ ناشتہ کیے بغیر دن شروع نہیں کروں گی۔
دوسری رائے،
میرے خیال میں ناشتہ انسان کے جسم کے لیے وہی حیثیت رکھتا ہے جو گاڑی کے لیے ایندھن کی ہوتی ہے۔ ساری رات کے بعد جسم کو توانائی کی ضرورت ہوتی ہے اور اگر ہم ناشتہ چھوڑ دیں تو وہ توانائی نہیں ملتی۔ میں جب جلدی اٹھ کر ناشتہ کرتا ہوں تو میرا دن زیادہ منظم اور بہتر گزرتا ہے۔ خاص طور پر دودھ، انڈا اور پھل اگر صبح کھا لیے جائیں تو دوپہر تک بھوک بھی نہیں لگتی اور دماغ بھی بہتر کام کرتا ہے۔
تیسری رائے،
میں پہلے ناشتہ چھوڑنے کا عادی تھا لیکن پھر میری والدہ نے سختی سے کہا کہ بغیر ناشتہ کیے اسکول نہ جایا کروں۔ اس کے بعد جب میں نے باقاعدگی سے ناشتہ کرنا شروع کیا تو فرق خود محسوس کیا۔ نہ صرف میری تھکن کم ہوئی بلکہ پڑھائی میں دھیان بھی بہتر ہوا۔ اب میں ہر روز کچھ نہ کچھ ضرور کھاتا ہوں۔ میرے لیے ناشتہ ایک اچھی شروعات کی ضمانت ہے۔
چوتھی رائے،
ناشتہ میرے لیے صرف کھانے کا وقت نہیں بلکہ خاندان کے ساتھ بیٹھنے کا ایک خوبصورت لمحہ بھی ہوتا ہے۔ جب سب لوگ ایک ساتھ میز پر ہوتے ہیں اور ہنسی مذاق کے ساتھ دن کا آغاز ہوتا ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ صحت مند ناشتہ کریں تو دن بھر چائے، بسکٹ یا فاسٹ فوڈ کی طلب بھی کم ہو جاتی ہے۔ میرے خیال میں ناشتہ صرف جسم نہیں بلکہ دل کے لیے بھی ضروری ہے۔
پانچویں رائے،
جب میں بغیر ناشتے کے دفتر جاتا ہوں تو آدھے گھنٹے بعد ہی کمزوری اور چڑچڑا پن محسوس ہونے لگتا ہے۔ اس کے برعکس جب میں ناشتہ کر لیتا ہوں تو ذہن تر و تازہ اور جسم ہلکا لگتا ہے۔ میرے لیے دلیا، انڈا یا پھل ایک بہترین صبح کی شروعات ہیں۔ ناشتہ کرنے سے نہ صرف جسمانی طاقت ملتی ہے بلکہ مزاج بھی اچھا رہتا ہے جو کسی بھی دن کی کامیابی کے لیے ضروری ہوتا ہے۔
چھٹی رائے، میرے نزدیک ناشتہ سب سے اہم ہے کیونکہ یہ جسم کو فعال کرتا ہے۔ جب ہم صبح کچھ کھاتے ہیں تو ہمارا جسم دن بھر بہتر انداز میں حرارے استعمال کرتا ہے۔ میں نے اپنی غذا میں تبدیلی ناشتہ سے ہی شروع کی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میری توانائی میں اضافہ ہوا اور غیر ضروری بھوک بھی کم ہو گئی۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ ناشتہ چھوڑنا اپنی صحت کے ساتھ ناانصافی ہے۔ مشق نمبر چار، سوال نمبر 11-18،
آپ نصیر جنگ کے سانپوں کے ساتھ تجربے کے حوالے سے انٹرویو سن رہے ہیں۔ انٹرویو سن کر ہر سوال کے لیے ए बी सी में से सही जवाब के सामने दिए गए खाने में टिक का निशान लगाएं। आप इंटरव्यू दो बार सुनेंगे।
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम एक नहायत मुनफरिद और हिम्मत वाले मेहमान के साथ गुफ्तगू करने जा रहे हैं। हमारे मेहमान ऐसे काम से वाबस्ता हैं जिनका सुनकर ही अक्सर लोग खौफजदा हो जाते हैं, लेकिन ये काम उनका मामूल है। हम बात कर रहे हैं नसीर जंग साहब की, जो सांपों को पकड़ने, उन्हें महफूज जगह मुंतकिल करने और देही इलाकों में जंगली हयात की हिफाजत करने वाले माहिर समझे जाते हैं। नसीर साहब, प्रोग्राम में खुश आमदेद।
जी बहुत शुक्रिया, आपने इतनी दूर बैठकर हमारे काम को अहमियत दी।
सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि आपने सांप पकड़ने और जंगली हयात के साथ काम करने का आगाज कैसे किया? ये तो बहुत हिम्मत वाला पेशा है।
जी बिल्कुल, ये काम आसान नहीं है। मेरा ताल्लुक एक छोटे से गांव से है जहां अक्सर घरों में सांप निकल आते हैं। जब मैं छोटा था तो एक बार मेरे छोटे भाई को सांप ने डस लिया और बदकिस्मती से हमें वक्त पर मदद नहीं मिल सकी। तब से मेरे दिल में बात बैठ गई कि मुझे कुछ सीखना है ताकि किसी और का बच्चा इस वजह से ना जाए। मैंने मुकामी लोगों, YouTube और किताबों से मालूमात हासिल की। अब अल्हम्दुलिल्लाह लोग हमें फ़ोन करते हैं और हम बगैर नुकसान पहुंचाए सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ाते हैं।
क्या वाकई हर सांप जहरीला होता है या लोग बिला वजह डर जाते हैं?
जी नहीं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। तकरीबन 80% सांप जहरीले नहीं होते, मगर लोग हर सांप को देखकर मार देते हैं। हालांकि सांप खुद इंसान से डरता है और अक्सर इसका कोई इरादा नहीं होता नुकसान पहुंचाने का। अगर हम इन्हें समझें और फासला रखें तो वो खुद ही चले जाते हैं।
जब आप किसी जगह सांप पकड़ने जाते हैं तो लोग किस तरह का रद्द अमल जाहिर करते हैं? खौफ होता है या दिलचस्पी लेते हैं?
शुरू में तो लोग बहुत घबराते हैं, कई बार तो दरवाजे ही बंद कर लेते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि मैं इसे आराम से बगैर मारे काबू पा लेता हूं तो हैरत से देखते रह जाते हैं। बच्चे बहुत शौक से देखते हैं और मैं हमेशा इन्हें ये सिखाने की कोशिश करता हूं कि इनसे डर खत्म होता है।
क्या कभी ऐसा हुआ कि आपको खुद भी खतरा महसूस हुआ हो या हादसा पेश आया हो?
जी एक बार हुआ था। एक जहरीला कोबरा झाड़ियों में था और मैंने उसे नजरअंदाज किया, सोचा कोई शायद आम सा सांप होगा। उसने अचानक फुंकार मारी और हमला किया, लेकिन अल्लाह का करम हुआ कि मेरे पास हिफाजती दस्ताने थे। तब से मैंने कभी हिफाजती सामान के बगैर काम नहीं किया।
आपके काम से न सिर्फ जान बचती है बल्कि एक तवाजुन भी बरकरार रहता है, आप इस बारे में क्या कहेंगे?
बिल्कुल सही फरमाया आपने, कुदरत का हर जानवर एक मकसद के लिए है। सांप चूहे खाता है, कीड़े मकोड़े खत्म करता है। अगर हम हर सांप को मार देंगे तो फसलों को नुकसान होगा, बीमारियां बढ़ेंगी। इसीलिए मैंने गांव के बच्चों को यह भी सिखाया है
कि हर जानवर को दुश्मन ना समझे।
क्या हुकूमत या कोई इदारा आपकी मदद करता है या ये सब आप खुद ही करते हैं?
जी, ज्यादातर खुद ही करता हूँ। कभी कभार मुकामी फॉरेस्ट ऑफिसर मदद कर देते हैं, लेकिन कोई मुस्तकिल ताउन नहीं होता। बस लोगों की दुआएं और दिल का सुकून ही मेरी कमाई है।
आप नौजवानों को क्या मशवरा देना चाहेंगे जो जानवरों या माहौलियात से दिलचस्पी रखते हों?
बस इतना कि सिर्फ खौफ से बाहर आएं, इल्म हासिल करें, तरबियत लें और कुदरत को समझें। आजकल जंगली हयात की हिफाजत बहुत ज़रूरी है और ये सिर्फ किताबों से नहीं, अमली तजर्बे से आती है। अगर नौजवान चाहें तो वो मेरे साथ भी काम कर सकते हैं, सीख सकते हैं।
क्या आप सांप का तमाशा भी दिखाते हैं?
नहीं जी, मैं कोई पेशावर मदारी नहीं। मैं तो सांप पकड़ने का काम खिदमत खल्क समझ कर करता हूँ। इनके तमाशे तो ड्रामे होते हैं, ये इनकी रोजी रोटी कमाने का धंधा है। जबकि मैं तो कोई पैसा नहीं लेता, लोगों का भला भी होता है और अल्लाह की मखलूक सांप की खत्म होती नस्लों को बचाया जा सकता है।
वाकई नसीर साहब, आपका जज्बा काबिले तारीफ है। हम दुआ करते हैं कि आपका काम मजीद फैले और लोगों में शऊर बढ़े।
बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें दावत दी, यही हमारे लिए एजाज है।
अब आप ये इंटरव्यू दोबारा सुनें।
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम एक नहायत मुनफरिद और हिम्मत वाले मेहमान के साथ गुफ्तगू करने जा रहे हैं। हमारे मेहमान ऐसे काम से वाबस्ता हैं जिनका सुनकर ही अक्सर लोग खौफजदा हो जाते हैं, लेकिन ये काम उनका मामूल है। हम बात कर रहे हैं नसीर जंग साहब की, जो सांपों को पकड़ने, उन्हें महफूज जगह मुंतकिल करने और देही इलाकों में जंगली हयात की हिफाजत करने वाले माहिर समझे जाते हैं। नसीर साहब, प्रोग्राम में खुश आमदेद।
जी बहुत शुक्रिया, आपने इतनी दूर बैठकर हमारे काम को अहमियत दी।
सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि आपने सांप पकड़ने और जंगली हयात के साथ काम करने का आगाज कैसे किया? ये तो बहुत हिम्मत वाला पेशा है।
जी बिल्कुल, ये काम आसान नहीं है। मेरा ताल्लुक एक छोटे से गांव से है जहां अक्सर घरों में सांप निकल आते हैं। जब मैं छोटा था तो एक बार मेरे छोटे भाई को सांप ने डस लिया और बदकिस्मती से हमें वक्त पर मदद नहीं मिल सकी। तब से मेरे दिल में बात बैठ गई कि मुझे कुछ सीखना है ताकि किसी और का बच्चा इस वजह से ना जाए। मैंने मुकामी लोगों, यूट्यूब और किताबों से मालूमात हासिल की। अब अल्हम्दुलिल्लाह लोग हमें फ़ोन करते हैं और हम बगैर नुकसान पहुंचाए सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ाते हैं।
क्या वाकई हर सांप जहरीला होता है या लोग बिला वजह डर जाते हैं?
जी नहीं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। तकरीबन 80% सांप जहरीले नहीं होते, मगर लोग हर सांप को देखकर मार देते हैं। हालांकि सांप खुद इंसान से डरता है और अक्सर इसका कोई इरादा नहीं होता नुकसान पहुंचाने का। अगर हम इन्हें समझें और फासला रखें तो वो खुद ही चले जाते हैं।
जब आप किसी जगह सांप पकड़ने जाते हैं तो लोग किस तरह का रद्द अमल जाहिर करते हैं? खौफ होता है या दिलचस्पी लेते हैं?
शुरू में तो लोग बहुत घबराते हैं, कई बार तो दरवाजे ही बंद कर लेते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि मैं इसे आराम से बगैर मारे काबू पा लेता हूं तो हैरत से देखते रह जाते हैं। बच्चे बहुत शौक से देखते हैं और मैं हमेशा इन्हें ये सिखाने की कोशिश करता हूं कि इनसे डर खत्म होता है।
क्या कभी ऐसा हुआ कि आपको खुद भी खतरा महसूस हुआ हो या हादसा पेश आया हो?
जी, एक बार हुआ था। एक जहरीला कोबरा झाड़ियों में था और मैंने उसे नजरअंदाज किया, सोचा कोई शायद आम सा सांप होगा। उसने अचानक फुंकार मारी और हमला किया, लेकिन अल्लाह का करम हुआ कि मेरे पास हिफाजती दस्ताने थे। तब से मैंने कभी हिफाजती सामान के बगैर काम नहीं किया।
आपके काम से न सिर्फ जान बचती है बल्कि एक तवाजुन भी बरकरार रहता है। आप इस बारे में क्या कहेंगे?
बिल्कुल सही फरमाया आपने। कुदरत का हर जानवर एक मकसद के लिए है। सांप चूहे खाता है, कीड़े मकोड़े खत्म करता है। अगर हम हर सांप को मार देंगे तो फसलों को नुकसान होगा, बीमारियां बढ़ेंगी। इसीलिए मैंने गांव के बच्चों को यह भी सिखाया है कि हर जानवर को दुश्मन ना समझें।
क्या हुकूमत या कोई इदारा आपकी मदद करता है या ये सब आप खुद ही करते हैं?
जी, ज्यादातर खुद ही करता हूँ। कभी कभार मुकामी फॉरेस्ट ऑफिसर मदद कर देते हैं, लेकिन कोई मुस्तकिल तावन नहीं होता। बस लोगों की दुआएं और दिल का सुकून ही मेरी कमाई है।
आप नौजवानों को क्या मशवरा देना चाहेंगे जो जानवरों या माहौलियात से दिलचस्पी रखते हों?
बस इतना कि सिर्फ खौफ से बाहर आएं, इल्म हासिल करें, तरबियत लें और कुदरत को समझें। आजकल जंगली हयात की हिफाजत बहुत ज़रूरी है और ये सिर्फ किताबों से नहीं, अमली तजर्बे से आती है। अगर नौजवान चाहें तो वो मेरे साथ भी काम कर सकते हैं, सीख सकते हैं।
क्या आप सांप का तमाशा भी दिखाते हैं?
नहीं जी, मैं कोई पेशावर मदारी नहीं। मैं तो सांप पकड़ने का काम खिदमत खल्क समझ कर करता हूँ। इनके तमाशे तो ड्रामे होते हैं, ये इनकी रोजी रोटी कमाने का धंधा है, जबकि मैं तो कोई पैसा नहीं लेता। लोगों का भला भी होता है और अल्लाह की मखलूक सांप की खत्म होती नस्लों को बचाया जा सकता है।
वाकई नसीर साहब, आपका जज्बा काबिल तारीफ है। हम दुआ करते हैं कि आपका काम मजीद फैले और लोगों में शऊर बढ़े।
बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें दावत दी, यही हमारे लिए एजाज है।
रिकॉर्डिंग ख़त्म हुई और इसके साथ ये इम्तहान भी ख़त्म हुआ।